नमस्कार, ग्रंथासार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कृति पर चर्चा करेंगे जो विज्ञान और मानवीय जिजीविषा का एक अद्भुत उत्सव है, एंडी वेयर का उपन्यास द मार्शियन।
और इस उपन्यास की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो शायद इसके लेखक का अपना सफर है।
हाँ बिल्कुल, वो कोई पेशेवर लेखक तो थे नहीं?
नहीं, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनकी खासियत है हार्ड साइंस फिक्शन में,
मतलब ऐसी कहानियां जो विज्ञान के ठोस सिद्धांतों पर आधारित होती हैं,
इतनी विश्वसनीय कि आपको लगने लगता है कि ये सब सच में हो सकता है।
और द मार्शियन तो इसका बेहतरीन उदाहरण है।
बिल्कुल, ये कहानी पहले उन्होंने अपने ब्लॉग पर एक सीरीज की तरह डाली थी।
अच्छा?
हाँ, और फिर 2011 में इसे खुद ही पब्लिश किया और वहां से ये तो एक ग्लोबल बेस्ट सेलर बन गई
और इस पर एक ऑस्कर नामांकित फिल्म भी बनी। तो आज हमारी चर्चा सिर्फ कहानी सुनाने तक नहीं रहेगी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक इंसान को एक निर्जन ग्रह पर छोड़ दिया जाए तो क्या होता है।
कहानी की शुरुआत ही मतलब दिल दहला देने वाली है। मंगल ग्रह पर एरिस-3 मिशन के अंतरिक्ष यात्री एक भयानक धूल भरे तूफान में फंस जाते हैं।
हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उन्हें मिशन छोड़कर तुरंत निकलना पड़ता है।
और इसी भगदड़ में अंतरिक्ष यात्री और वनस्पति शास्त्री मार्क वॉटनी वो एक एंटीना से टकराकर दूर जा गिरते हैं। उनके स्पेस सूट से कोई सिग्नल नहीं आता और उनके साथ ही उन्हें मृत मानकर भारी मन से मंगल से रवाना हो जाते हैं।
और यहीं से मतलब असली कहानी शुरू होती है। वॉटनी जिंदा हैं।
हाँ, जब उन्हें होश आता है तो वो एक ऐसे ग्रह पर हैं जहाँ कुछ भी नहीं है,
न हवा न पानी और पृथ्वी से संपर्क का कोई जरिया नहीं।
और अगला मिशन 4 साल बाद आना है, वो भी हजारों किलोमीटर दूर।
किसी भी आम इंसान के लिए तो ये एक तरह से मौत का फरमान है।
बिल्कुल, पर वॉटनी घबरा कर बैठ नहीं जाते, वो तुरंत अपने स्थिति का एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं।
यही तो इस उपन्यास का मूल मंत्र है।
हाँ, वो निराशा में नहीं डूबते, वो अपनी स्थिति को एक इंजीनियर की तरह देखते हैं, समस्याओं की एक लिस्ट जिसे एक एक करके हल करना है।
उनका एक मशहूर वाक्य है जो मुझे लगता है पूरी किताब का सार है, I'm going to have to science the shit out of this.
हाँ, जिसका मतलब है कि मुझे इस मुसीबत से निकलने के लिए विज्ञान का पूरा पूरा इस्तेमाल करना होगा।
ये सिर्फ एक मजाकिया लाइन नहीं है, ये उनका दर्शन है।
सही कहा, इस कहानी का सबसे बड़ा हीरो कोई इंसान नहीं बल्कि साइंटिफिक मेथड है।
ये बहुत दिलचस्प बात है, मतलब एक्शन किसी विलन से लड़ने में नहीं है
बल्कि
गणित की गणना करने, रसायन विज्ञान के प्रयोग करने और इंजीनियरिंग की समस्याओं को सुलझाने में है।
तो लेखक ने वनस्पति विज्ञान जैसी चीज को रोमांचक कैसे बना दिया?
यही तो लेखक का कमाल है। वॉटनी के पास लगभग 300 दिनों का खाना है पर उन्हें 1400 दिन से ज्यादा जिंदा रहना है।
तो वो एक नामुमकिन सा फैसला करते हैं,
मंगल पर खेती करने का।
मंगल पर? हाँ, वो मंगल की बंजर मिट्टी को अपने रहने के ठिकाने यानी हैबिटेट में लाते हैं और उससे उपजाऊ बनाने के लिए अपने ही मल को खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं।
और पानी? पानी की चुनौती तो सबसे बड़ी होगी।
सबसे बड़ी, वो रॉकेट के बचे हुए ईंधन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को अलग करने की एक बेहद खतरनाक प्रक्रिया अपनाते हैं
जिसमें एक छोटी सी गलती
उन्हें उड़ा सकती थी। हर कदम एक पहेली है और हर पहेली का सही हल वो जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता है।
और जब वो पहली बार आलू उगाने में सफल होते हैं
तो वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो एक निर्जीव ग्रह पर मानवीय बुद्धि और जीवन की जीत का प्रतीक बन जाता है।
तो एक तरफ मार्क वॉटनी मंगल पर ये सब कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि दुनिया उन्हें भूल चुकी है,
उन्हें लगता है कि वो मर चुके हैं सबके लिए,
लेकिन पृथ्वी पर कहानी एक अलग ही मोड़ ले रही होती है।
हाँ, नासा में मिंडी पार्क नाम की एक सैटेलाइट एनालिस्ट कुछ ऐसा देखती है जो उसे चौंका देता है।
वो क्या देखती है?
वो एरिस-3 साइट की पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना करते हुए देखती है कि कुछ चीजें अपनी जगह से हिली हुई हैं।
और यहीं से ये अविश्वसनीय सच सामने आता है
कि मार्क वॉटनी जिंदा है।
अब नासा के सामने एक अभूतपूर्व संकट है, उसे बचाएं कैसे?
लेकिन वॉटनी को तो ये सब पता ही नहीं है, वो एक पुरानी रोवर में सैकड़ों किलोमीटर्स का सफर करके दशकों पुराने पाथफाइंडर प्रोब को ढूंढ निकालते हैं
और उसे किसी तरह चालू करके,
हाँ, महीनों बाद वो पृथ्वी से संपर्क साधने में कामयाब होते हैं।
तो जैसे ही संपर्क स्थापित होता है पाठक को लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा,
लेकिन लेखक यही कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ ले आते हैं।
उनके हैबिटेट का एयर लॉक एक धमाके में फट जाता है।
बिल्कुल, और ये लेखक की सबसे बड़ी खूबी है, वो उम्मीद को कभी भी पूरी तरह बसने नहीं देते।
हर जीत के बाद एक बड़ी हार।
उस धमाके में उनकी आलू की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, अब भुखमरी का खतरा पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक हो जाता है।
और इसके ठीक बाद एक और झटका लगता है।
हाँ, नासा जो सप्लाई रॉकेट भेजता है वो लॉन्च होते ही फट जाता है, एक के बाद एक दोहरे झटके।
इन मुश्किलों के बीच वॉटनी का जो ह्यूमर है वो कमाल का है। क्या ये सिर्फ कहानी को मनोरंजक बनाने का तरीका है?
ये बहुत गहरा सवाल है। मेरे ख्याल से दोनों बातें सच है। जब आपके पास कोई नहीं होता तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना दिमाग बन सकता है।
निराशा और अकेलापन,
हाँ, वो आपको अंदर से खा सकते हैं। वॉटनी का ह्यूमर, उनका मजाकिया अंदाज उस निराशा को दूर रखने का एक तरीका है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म।
उनकी लॉग एंट्रीज जिसमें वो खुद से बातें करते हैं,
मजाक करते हैं, डिस्को म्यूजिक से अपनी नफरत के बारे में लिखते हैं, ये सब उन्हें इंसान बनाए रखता है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी हमारा व्यक्तित्व ही हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है।
और जब पृथ्वी पर सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती हैं, तब कहानी में एक युवा वैज्ञानिक आता है, रिच पर्नल।
हाँ, और वो एक ऐसी योजना के साथ सामने आता है जिससे सुनकर नासा के अधिकारी चौंक जाते हैं, द रिच पर्नल मैनूवर।
यहाँ एक दिलचस्प संघर्ष देखने को मिलता है नियमों और एक इंसान की जान के बीच।
बिल्कुल, पर्नल की योजना यह है कि वॉटनी का पुराना क्रू जो हर्मी स्पेसशिप में पृथ्वी लौट रहा है वो वापस मुड़े
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके
एक गुलेल की तरह दोबारा मंगल की ओर जाएं और वॉटनी को ले आएं। ये योजना वैज्ञानिक रूप से संभव है लेकिन
बेहद खतरनाक।
हाँ, इसमें एक के बजाय 6 अंतरिक्ष यात्रियों की जान का खतरा है। नासा का डायरेक्टर इसे मना कर देता है
लेकिन मिशन कमांडर मेलिसा लुइस और उनका क्रू कुछ और ही सोचते हैं।
वो नासा के आदेशों के खिलाफ जाकर एक तरह से बगावत कर देते हैं।
क्या ये सिर्फ अपने दोस्त के प्रति वफादारी है या
ये उससे भी आगे की बात है? ये इस विचार का समर्थन है कि मानवता नियमों से बड़ी है और यहीं पर कहानी एक व्यक्तिगत संघर्ष से ऊपर उठकर एक वैश्विक सहयोग की गाथा बन जाती है।
अच्छा, वो कैसे?
जब नासा के पास संसाधन कम पड़ते हैं तो चीन की स्पेस एजेंसी जो अब तक उनकी कॉम्पिटिटर थी अपना शक्तिशाली बूस्टर रॉकेट देकर मदद के लिए आगे आती है।
तो मार्क वॉटनी का बचाव अब सिर्फ अमेरिका का मिशन नहीं रहता?
नहीं, ये पूरी मानवता का साझा प्रयास बन जाता है।
अब कहानी अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में पहुंचती है। वॉटनी को मंगल की सतह पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करना है।
हाँ, उस जगह पहुँचना है जहाँ अगला यानी एरिस-4 मिशन का यान MAV पहले से मौजूद है।
और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो अंतिम योजना तो सुनकर ही होश उड़ जाते हैं।
बिल्कुल, हर्मीस यान मंगल के पास से बहुत तेजी से गुजरेगा, वो उतर नहीं सकता। वॉटनी को MAV से लॉन्च होकर हर्मीस तक पहुंचना है।
लेकिन हर्मीस की गति से मेल खाने के लिए MAV को बहुत हल्का होना जरूरी है।
तो नासा के निर्देश पर वॉटनी उस अरबों डॉलर के अंतरिक्ष यान को सचमुच तोड़ना शुरू कर देते हैं।
क्या क्या हटाते हैं वो?
खिड़कियां, कंट्रोल पैनल, यहाँ तक कि उसकी नाक भी हटा देते हैं और उसे बस कैनवस के एक टुकड़े से ढक देते हैं।
मतलब एक कन्वर्टेबल रॉकेट में अंतरिक्ष की यात्रा, एक आत्मघाती प्रयास जैसा।
हाँ, और क्लाइमैक्स में जब उनका यान सही ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता
तब कहानी अपने चरम पर पहुंच जाती है।
कमांडर लुइस उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं पर रस्सी छोटी पड़ जाती है। तब वॉटनी जो करते हैं वो विज्ञान और दुस्साहस का अद्भुत मिश्रण है।
वो क्या करते हैं?
वो अपने स्पेस सूट के दस्ताने में एक छेद करते हैं और बाहर निकलती हवा के दबाव को एक छोटे थ्रस्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं,
खुद को आयरन मैन की तरह लुइस की ओर धकेलने के लिए।
हाँ, ये सिर्फ एक एक्शन सीन नहीं है, ये पूरी किताब का सार है।
अपनी बुद्धि और हिम्मत के बल पर असंभव को संभव कर दिखाना।
और अंततः वो बचा लिए जाते हैं और अपने क्रू से दोबारा मिल जाते हैं।
तो इस पूरी यात्रा को देखें तो द मार्शियन सिर्फ मंगल पर जिंदा रहने की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
यह इस बात का उत्सव है कि जब इंसान अपनी बुद्धि, दृढ़ता और सहयोग की भावना का उपयोग करता है तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है।
और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे और निराशाजनक पलों में भी ज्ञान और थोड़ा सा ह्यूमर हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं।
ये एक बेहद आशावादी और जीवन की पुष्टि करने वाली कृति है
जो कहती है कि हम इंसान समस्याएं सुलझाने में माहिर हैं, चाहे वो समस्या हमारे अपने ग्रह पर हो या मंगल पर।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।